राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर वन चली जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वन चली जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे All glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज कौन सी श्लोक संख्या है, कौन सा अध्याय? दूसरा अध्याय। श्लोक संख्या 66 है। 66 हो गया, 67 से शुरू करना है। सब लोगों का, कितने लोगों का ये मत है? हाँ तो सही, 67 से शुरू करना है। और किसी का कुछ और दूसरा श्लोक संख्या है किसी के हिसाब से? नहीं हाँ, 67 से शुरू करना। मुझे बताया था 69 से शुरू करने के लिए। चलो 67 से शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि भाई जो यहाँ नियमित रूप से आते हैं उनके हिसाब से कौन सा श्लोक संख्या है। जो मुझे बताया जाता है वो दूसरा, उनका दूसरा हिसाब है। 67 से करना है। अच्छा ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 67 से हम कितना करें, पूरा अध्याय पूरा करें, समाप्त कर दें या कुछ कम करें? समाप्त कर दें अध्याय पूरा। अच्छा तो 67, कितने लोगों के पास गीता है, हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है, तो निकाल लिया सबने। 67वां, इंद्रियाणां हिचरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवं वसि। अनुवाद कौन पढ़ेगा, बोलिए।
पानी में तैरती नाव में प्रचंड वायु दूर
नहीं, नाव में नहीं है, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव
को प्रचंड वायु,
नाव
को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस प्रकार मन,
जिस प्रकार नहीं है,
जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है।
बहुत जल्दी नहीं पढ़ना कि आप जो है कुछ का कुछ पढ़े, इतनी जल्दी नहीं है पढ़ने की है? तो श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते। इंद्रियाणाम ही चरताम का मतलब क्या है, इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण कर रहे हैं। चरताम, चरताम का मतलब विचरण कर रहे हैं, है ना? तो प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय में विचरण कर रही है। इंद्रियाणाम ही चरताम, प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय में विचरण कर रही है। ये इंद्रियां कौन सी, ज्ञानेन्द्रियां या कर्मेंद्रियां? ज्ञानेन्द्रियां। ज्ञानेन्द्रियां कितनी हैं? पांच हैं और उनके विषय हैं। तो प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय का अपना एक विषय है। ज्ञानेन्द्रियां पांच हैं। एक तो है सुनने की इंद्रिय, श्रोत्रम चक्षु देखने की इंद्रिय है, और रसना स्वाद लेने की, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम स्पर्श करने की, और रसना स्वाद लेने की और घ्राण सूंघने की। तो पांच इंद्रियां हैं, इंद्रियां कहें या ज्ञान इंद्रियां कहें, तो पांच ही इंद्रियां हैं, इनके पांच अलग अलग विषय हैं। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय में विचरण कर रही है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, तो जिस इंद्रिय पर मन लगा हो, तो पांच इंद्रियों में से मन किसी एक इंद्रिय पर लगा है, तो वही इंद्रिय मन को हरण कर लेती है। यहां पर वही इंद्रिय है उसकी बुद्धि को हरण कर लेती है। पांच इंद्रियां हैं, अपने अपने विषय में लगी हैं, विचरण कर रही हैं। जो श्रोत्र इंद्रिय है वो सुनने में लगी है, चक्षु इंद्रिय देखने में लगी है ना, और श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम स्पर्श करने में स्पर्श इंद्रिय है, रसनम रसना घ्राण सूंघ। तो मैं ये इंद्रियां जो है अपनी विचरण कर रही हैं, लेकिन जिस इंद्रिय के साथ मन लगा हो, जिस इंद्रिय पर मन लगा है, वो इंद्रिय उसकी बुद्धि का भी हरण कर लेती है ना। तो यहां प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त की दिव्य प्रगति पथ से विपथ, भक्त को क्षमा करना, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तो अब यहाँ समझने की बात है कि भगवान यहाँ पर उदाहरण क्या दे रहे हैं, वायुर नावम इव अम्बसी, कि वायु हरण कर लेती है नाव को जल में। आप सुन रहे हैं, तो नौका जो है जब पानी में होती है तो हवा जो है नौका को दूर ले जाती है, हरण कर लेती है ना। अब यहां पर हवा क्या है, आप सोचिए कि हवा क्या है और नौका क्या है। भगवान ने यहां जो उदाहरण दिया है, तो हवा की तुलना किससे की है, हैं इंद्रियों से है ना। हाँ, कई इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से या एक इंद्रिय, एक इंद्रिय है, जिस इंद्रिय में मन लगा हुआ, जिस इंद्रिय में मन लगा हुआ है, तो वो ही इंद्रिय हवा बन जाती है, ठीक है। और नौका क्या है, बुद्धि, इंद्रिय जो है प्रज्ञा को हरण करती, प्रज्ञा। तो बुद्धि जो है ये नौका है ना, तो बुद्धि जो है नौका है, तो बुद्धि जो है नौका है ना? और जो इंद्रिय है ये हवा है ना? अभी जो बुद्धि है ये नौका है, मनुष्य का जीवन, हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, मनुष्य बुद्धि ही नौका है। कभी कभी कहते हैं, तभी मनुष्य का शरीर ही नौका है, हमारे जो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है यही नौका है ना। वास्तव में मनुष्य का शरीर क्या है, ये तो वैसे ही है जो पशु का शरीर हो, पंच तत्वों से बना है। अगर कोई विशेषता है तो बुद्धि की तो विशेषता है, तो वास्तव में तो बुद्धि ही जो है नौका है। मनुष्य के जीवन में जो बुद्धि है यही एक विशेष है जो पशुओं में नहीं है, ये नौका हमको भवसागर से पार करेगी। तो बुद्धि ही है नौका है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि जिसमें मन, जिस इंद्रिय में मन लगा है, वही इंद्रिय इसको अपहरण कर लेती है। तो जो हमारी बुद्धि रूपी नौका है, ये हमको भव सागर के किनारे ले जाना चाहती है, लेकिन जो इंद्रिय है, अगर मन जो है किसी इंद्रिय में लग गया, किसी भी इंद्रिय में मन लग गया, तो वही इंद्रिय इसका हरण कर लेगी। तो किनारे में जाने के बजाय जिन नौका कहाँ जाएगी, उल्टी तरफ जाएगी, किनारे से दूर। तो जो मनुष्य की बुद्धि है ये एक नौका है, और ये जो नौका है ये हमको भवसागर से पार करने के लिए मिली है मनुष्य की बुद्धि। तो ये बुद्धि जो है ना, तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें, यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी है ना, तो वह भक्त को दिव्य प्रकृति से दिव्य प्रकृति पद से विपत्ति कर सकती है ना। तो इसका मतलब इंद्रियों को जो है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना जरूरी है। कोई भी इंद्रिय अगर विषय भोग में लग गई है तो वो इंद्रिय जो है मन को खींच लेगी, और जो है मन के साथ बुद्धि को भी खींच लेगी। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि मन जो है अगर जिस इंद्रिय में मन लग गया तो बुद्धि भी जो है, तो मन और बुद्धि जो है मतलब बड़े एक दूसरे के निकट हैं। अगर मन आकर्षित हो जाता है तो बुद्धि भी आकर्षित हो जाती है उसकी, तो उसकी जो पूरी की पूरी बुद्धि है वो कहाँ लगी है, इंद्रिय तृप्ति में लगेगी। कैसे इंद्रिय तृप्ति की जाए, आप समझ रहे हैं? तो आजकल जो है मतलब कितनी बुद्धि है लोगों के पास में, और बहुत बुद्धि है, लेकिन पूरी की पूरी बुद्धि किस में लगी है, इंद्रिय तृप्ति में। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के ही कार्यों में प्रगति हो रही है ना। आजकल की जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये किस में लगी हुई है, इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है ना। यही बुद्धि जो है पहले ऋषि मुनियों के पास थी है ना, तो वो भवसागर को पार करने में लगी होती थी यही बुद्धि। तो पहले इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी है ना, लेकिन बुद्धि तो थी, आप समझ रहे हैं? पहले बुद्धि थी लोगों के पास, लेकिन वो बुद्धि जो है किस में लगी होती थी, भव सागर को कैसे पार करें, इस शरीर को छोड़ करके हम कैसे भगवान के धाम में जाएं, दोबारा संसार में ना आए। तो बुद्धि यही है, अभी भी बुद्धि है, बहुत बुद्धि है लोगों के पास, लेकिन वो बुद्धि जो है सब पूरी की पूरी केंद्रित किस में है, इंद्रिय तृप्ति में केंद्रित है। इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा विस्तार हो रहा है, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, इतनी मशीनें नहीं थी, इतने सब जो है ना विकास नहीं था, अभी कितना विकास हो गया है। पहले वही बुद्धि थी, वो जंगल में जा करके और वो जो है चिंतन करते थे कि कैसे हम इस मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ उठाए, है ना। तो अब हम सुनेंगे श्लोक संख्या 68, तुम मेरे पीछे बोलिए। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद कौन पढ़ेगा?
हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर
है। तस्मात है ना, तो इसलिए भगवान के तस्मात, तस्मात का मतलब इसलिए, तो इसलिए भगवान क्यों कह रहे हैं कि पहले जो बात बताई है उसका निष्कर्ष है, उसका निष्कर्ष है ना। क्योंकि इंद्रियां जो है अगर विषय में लगी हैं है? तो जिस इंद्रिय में मन लगा है वही इंद्रिय बुद्धि को खींच लेगी, अपहरण कर लेगी है? नौका जो है, आपकी जो नौका है जो समुद्र के किनारे जा रही है, समुद्र के तट में जा रही है, वो तट से दूर जा रही है, तट से दूर चली जाएगी। तस्मात इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इसलिए है महाबाहो सब प्रकार से जिसने इंद्रियों को निगृहित किया हुआ है, निगृहित किया हुआ है इंद्रियाणि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के विषयों से जिसने पकड़ा हुआ है, इंद्रियों को वश में किया हुआ है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, सुरक्षित है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अपनी बुद्धि को आप अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहते हैं, जैसे कि आपकी बुद्धि जो है ये नौका, आपकी बुद्धि रूपी जो नौका है ये कहाँ जाए, भव सागर के पार जाए, तट की ओर जाए, इसके लिए जरूरी है कि जितनी भी इंद्रियां हैं सर्वशः है, सब प्रकार से इंद्रियां जो है निग्रहित की जाए, ग्रहित माने पकड़ी हुई है ना, और निग्रह माने विशेष रूप से उनको पकड़ी। और महाबाहु, भगवान अर्जुन को महाबाहु क्यों कह रहे हैं, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, तो विशाल भुजाओं वाला है वो पकड़ भी सकता है ना, जिसकी विशाल भुजाएं बलिष्ठ भुजाएं हैं तो वो पकड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को जो कह रहे हैं कि तुम्हारी विशाल भुजाएं हैं मतलब बलिष्ठ भुजाएं हैं, तो इन बलिष्ठ भुजाओं के द्वारा अपनी इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों से पकड़ करके रखो, है ना। तो हम प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ेंगे, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति ये हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में करता है, वो साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो ये जो है मतलब भगवान सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि इंद्रियों को जो है इंद्रिय तृप्ति में ना लगा करके कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। अब श्लोक संख्या 69 मेरे पीछे बोली, यान सा सर्वभूतान तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सानिशा पश्यतो मुने। अनुवाद बोलो आप। यानि सा सर्वभूतानां, जो रात्रि है समस्त प्राणियों के लिए, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी जागता है, मतलब जो समय सोने का है किन के लिए, सब प्राणियों के सोने का टाइम, निशा, निशा का मतलब है रात्रि, है ना। तो प्राचीन काल में रात में कोई काम नहीं होता था, अभी आजकल तो ये सब बिजली है, ट्यूबलाइट है ना, तो उस समय जो है मतलब कोई काम नहीं होता था, क्योंकि रात में अगर कुछ काम करना है तो फिर दिया जलाना है, लालटेन जलाना है, इसमें बड़ा परिश्रम होता था, है ना। तो सामान्य लोग जो है जिनके पास ये सब व्यवस्था नहीं होती थी, है ना, तो भी जो है रात में कोई काम नहीं, जैसे अंधेरा हो गया तो सब काम बंद हो जाता, फिर सड़कों में जो है रोशनी का कोई उपाय ही नहीं था कि सड़कों में रोशनी की जाए, है? अगर चंद्रमा का प्रकाश है तब तो जो है कुछ काम हो सकता है सड़कों में, लेकिन अगर अंधकार है तो फिर मसाल लेकर के कोई व्यक्ति निकलेगा तो अपने लिए ही केवल रोशनी वो पैदा कर सकता है और किसी के लिए नहीं, है ना। तो रात्रि जो है मतलब सामान्य लोगों के लिए रात्रि एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि वे बिल्कुल बेखबर होते हैं कि मतलब क्या हो रहा है, वो बिल्कुल बेखबर होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, वो जो है बिल्कुल उसमें अनजान रहते हैं कि रात में कुछ अगर हो रहा हो तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता है, उनकी जो है सोने के लिए होती है और उनके लिए बिल्कुल अंधकार रहता है। यानि सा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी जागता है ना। तो वो रात्रि क्या है, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत के जो कार्य हैं ये समस्त प्राणियों के लिए रात के समान है, जिसमें कि संयमी जागता है ना, और जब श्याम जागृति भूतानी, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, यानी इंद्रिय तृप्ति के कार्य, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में सब प्राणी जागते हैं, है ना। सानिसा पश्यतो मुने, तो वो जो है उस मुनि के लिए क्या है, रात्रि के समान है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं क्या, बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्म निरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्म निरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। क्या समझे, विचारवान पुरुषों या आत्म निरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। जो विचारवान पुरुष हैं, आत्म निरीक्षक पुरुष हैं, उनके कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि वो जो है क्या कर रहे हैं, है ना। तो जो आत्म निरीक्षक लोग होते हैं, कृष्ण भावना भावित लोग होते हैं, तो वे कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं, हैं, और अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, हैं, कि हम कैसे कृष्ण को प्राप्त करें, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करें। वो सब कार्य उनके लिए क्या है, रात के समान है, कोई महत्व नहीं है। उन्हें कुछ उसका जो है पता नहीं चलता कि इसका कुछ महत्व है, कुछ भी महत्व नहीं समझते इन चीज़ों का, है ना। तो रात्रि के समान है, है ना। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आप निरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि प्रभुपाद समझा रहे हैं भगवान ने क्या कहा है। तो भगवान जो बता रहे हैं कि जो जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, मतलब आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, कृष्ण भावनामृत, तो इसमें जो भक्त होते हैं उनको कितना सुख प्राप्त होता है, वे कितना इसमें रस प्राप्त कर रहे हैं, कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उसमें वो लोग बिल्कुल बेखबर हैं। भौतिकतावादी लोग हैं, उनको कुछ भी रुचि नहीं है, और उसका कुछ भी महत्व नहीं देते, है ना। तो यहाँ पर भगवान उसी को कह रहे हैं कि दिन रात का अंतर है। जैसे कभी बोलते हैं ना भाई, आपके लिए जो दिन है वो हमारे लिए रात है, हैं, और आपके लिए जो रात है वो हमारे लिए दिन है, दिन रात का अंतर है। तो वही भगवान समझा रहे हैं कि जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, है ना, और जो कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं, तो उनके विचारों में दिन रात का अंतर है, दिन रात का अंतर है, है ना। दिन रात बिल्कुल उल्टा है ना, दिन रात का अंतर है, है ना। तो इसमें श्री भगवान ने कहा पुस्तक में, एक श्लोक की बड़ी विस्तृत व्याख्या है, तो इसमें कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप सुनिए बड़े ध्यान से। जिस समय रूस में हरे कृष्ण आंदोलन फैल रहा था, उस समय रूसी सरकार ने देखा कि हरे कृष्ण भक्तगण ना तो शराब ही पीते हैं और ना ही मांस खाते हैं, समझ रहे। रूस में जब ये आंदोलन फैल रहा था तो सरकार ने क्या देखा, ये लोग ना तो शराब पीते हैं ना मांस खाते हैं, ये तो केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही करते रहते हैं। तो रूसी सरकार ने हरे कृष्ण भक्तों के इस कार्य को कानूनी अपराध माना, कानूनी अपराध। रूसी सरकार का कहना था कि हरे कृष्ण भक्तगण शराब और मांस का सेवन ना करके अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और हरे कृष्ण के कीर्तन के द्वारा अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। रूसी सरकार का विचार था कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शराब पीना और मांस खाना अत्यंत आवश्यक है, और हरे कृष्ण मंत्र की एक ही ध्वनि यदि बार बार सुनी जाए तो दिमाग के लिए अत्यंत घातक है। उनके लिए हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि रात्रि के अंधकार के समान है। आप सुन रहे हैं? तो भगवान जो बता रहे हैं तो ये बिल्कुल है ना, इसी तरह की स्थिति है कि जो लोग जो है भौतिकतावादी हैं उनके लिए इस तरह की स्थिति है ना। अब इसमें जो है कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादियों के लिए जो निशा अर्थात रात्रि है उसमें आत्म संयमी पुरुष जागते हैं। यदि शास्त्रों की दृष्टि देखा जाए तो निशा काल रात्रि के 10:34 से प्रारंभ होता है, 10:34 से प्रारंभ होता है और रात्रि के 3:22 पर समाप्त होता है। हाँ, ये 4:48 का ये निशा काल है। निशा काल के पश्चात निशांत काल शुरू होता है, रात्रि के 3:22 से प्रारंभ होता है। क्या निशांत काल, जहां निशाकांत होता है, और प्रातः 5:46 पर समाप्त होता है निशांत काल, है ना। 5:46 मतलब ये इस प्रकार निशांत काल 2:24 का होता है। निशांत काल की इस अवधि में 48 के 3 मुहूर्त होते हैं, 3:22 से लेकर के 5:46 तक, जो 2:24 का समय होता है निशांत काल का, इसमें 48 के 3 मुहूर्त होते हैं, जिनमें से बीच का मुहूर्त जो रात्रि के 4:10 से प्रारंभ होकर 4:58 पर समाप्त होता है ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से लेके 4:58 तक, ब्रह्म नहीं ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। श्री शिल प्रभुपाद ने 48 के इसी मुहूर्त के अंदर 4:30 से प्रारंभ करके 20 या 25 के लिए मंगल आरती का कार्यक्रम स्थापित किया है। शिल प्रभुपाद का आदेश है कि यदि आप मर रहे हैं तो भी आप घिसड़ते हुए भी मंगल आरती में भाग लीजिए। मंगल आरती में भाग लेने के लिए हरे कृष्ण भक्तों को 4 बजे या उससे भी पूर्व जागना होता है, ताकि वे 4:30 मंगल आरती प्रारंभ होने के पूर्व स्नान करके तिलक धारण करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर में आ सकें। परंतु ऐसा कई बार देखा जाता है कि भौतिकतावादी लोग जिस समय अर्थात रात्रि के 3:30 या 4 बजे नाइट क्लबों में अपना समय गुजार कर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसका एक अर्थ ये भी निकल रहा है, कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति सेमि। अब समस्त प्राणियों की अब रात शुरू हुई, जहाँ रात्रि समाप्त होती है निशांत काल, है ना, है? तो वो जो है अब उनकी जो है रात शुरू होती है ना, तो वो नाइट क्लब से आकर के अब सोने की तैयारी कर रहे हैं जहाँ रात्रि समाप्त हुई, है ना। वही 4 बजे के आसपास जो है भक्त लोग जागते हैं, तस्याम जागृति सेमि, उस समय जागते हैं आत्मसंयमी लोग, उस समय जागते हैं, है ना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिस समय भौतिकतावादियों की निशा प्रारंभ होती है अर्थात वे लोग सोने की तैयारी करते हैं, उस समय शास्त्रों के अनुसार तथा हरे कृष्ण भक्तों के अनुसार निशा का अंत होता है, अर्थात हरे कृष्ण भक्तगण जागते हैं, वो जागते हैं। अब वो सोने की तैयारी कर रहे हैं, जाग रहे हैं, है ना, जागते हैं तथा मंगल आरती में भाग लेने की तैयारी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक की शिक्षा हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों के साथ भी अत्यंत मेल खा रही है ना। तो ये जो है मतलब समझने वाली बात है। अब देखिए एक और इसमें बात है, इसमें बहुत अच्छी मतलब प्रभुपाद की कृपा से मैंने लिखा है ये, गांधी जी तथा शिल प्रभुपाद में अंतर। इसमें जो है तो गांधी जी और प्रभुपाद में क्या अंतर है, लोग तो नहीं जानते, वो तो सोचते हैं भाई वो भी महापुरुष हैं, गांधी जी भी महापुरुष हैं, लेकिन अंतर देखिए, जिस समय गांधी जी लंदन में गए थे तथा उनसे वहां की इंद्रिय तृप्ति की तड़क भड़क के विषय में पूछा गया कि उन्हें लंदन का शहर कैसा लगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें बहुत अच्छा लगा तथा वे चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी को इंद्रिय तृप्ति की ऐसी ही सुविधा प्राप्त हो, गांधी जी ने कहा। गांधी चाहते थे, उनका त्याग तो था, त्याग इसलिए था कि भाई सबको इंद्रिय तृप्ति नहीं मिले तो मैं मुझे भी ना मिले, तो वो है तो आखिर इंद्रिय तृप्ति, और ये क्या है, इंद्रिय तृप्ति का विस्तार है, है? कि भारतवासी को इंद्रिय तृप्ति का अवसर नहीं मिला तो फिर मैं भी नहीं करूँगा इंद्रिय तृप्ति, तो सब भारतवासियों को जो है मतलब इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएँ मिले, है ना। तो एक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की चिंता करता है, दूसरा व्यक्ति देश की इंद्रिय तृप्ति की चिंता कर रहा है, तो वो माना जाए भाई वो बहुत बड़ा त्यागी है कि अपने देशवासियों की इंद्रिय तृप्ति, नहीं वो है तो इंद्रिय तृप्ति का ही विस्तार, उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति का विस्तार कर लिया है कि पूरे देश को इंद्रिय तृप्ति की सुविधा मिले, है ना। तो ये कोई महानता नहीं है, है ना। तो गांधी जी ने ये उत्तर दिया कि लंदन शहर बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक भारतवासी को ऐसी सुविधा मिले जीवन की, है ना। परंतु जिस समय श्रील प्रभुपाद लंदन गए तथा उनसे भी यही प्रश्न पूछा गया कि उन्हें लंदन का शहर कैसा लगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें लंदन का शहर अत्यंत तुच्छ मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर कागज और प्लास्टिक की सेवा और कुछ भी नहीं है। तो इस श्लोक में जिस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि संसार के प्राणियों के लिए इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के समान है, परंतु आप निरीक्षक मुनि के लिए वो रात्रि के समान है, उसी प्रकार लंदन शहर की तड़क भड़क गांधी जी तथा संसार के अन्य प्राणियों के लिए अत्यंत आकर्षक है, परंतु श्रील प्रभुपाद के लिए वो तुच्छ है ना। तो इसको जो है मतलब समझना है ना। अच्छा अब आगे है, श्लोक संख्या 70। अच्छा घड़ी है क्या किसी के पास? यहाँ पर घड़ी की व्यवस्था नहीं है, देखते हैं कितना टाइम है। 8:30 है, तो हमें कब समाप्त करना है? तो 9 बजे समाप्त करना है, 9 बजे ठीक है। श्लोक संख्या 70। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वा तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी। अनुवाद पढ़िए। तो श्लोक देखिए, श्लोक में क्या है, भगवान कह रहे हैं आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। आपूर्यमाणम का मतलब क्या है? नित्य परिपूर्ण है क्या? समुद्र। आपूर्यमाणम का मतलब है नित्य, नित्य परिपूर्ण है, नित्य परिपूर्ण अचल है प्रतिष्ठम, जिसकी प्रतिष्ठा अचल है, यानी जल का स्तर अचल है, बदलता नहीं है। उस समुद्र में आपा प्रविशन्ति यद्वत्, आपा माने जल प्रवेश करते हैं, तो समुद्र में जल प्रवेश करते हैं, लेकिन समुद्र की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। कितना पानी आता है समुद्र में, लेकिन समुद्र का स्तर बड़ा नहीं होता, समुद्र का स्तर नहीं बड़ा होता, समुद्र का स्तर नहीं बढ़ता है। और कितनी नदियों का पानी गिरता है समुद्र में, है ना। यद्वत माने जिस प्रकार, इसमें यद्वत और तद्वत है ये शब्द है ना, यद्वत माने जिस प्रकार और तद्वत का माने उसी प्रकार। तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, उसी प्रकार जैसे जिसमें इच्छाएं प्रवेश करती हैं है? लेकिन उसका जो है वो व्यथित नहीं होता है, उसके अंदर वो सब चीजें नहीं आती, व्याकुलता नहीं आती, बेचैनी नहीं आती, समुद्र जैसे स्थिर है। तो इतना नदियों का जल जो है उसमें प्रवेश करता है, समुद्र जो है स्थिर रहता है, कुछ भी उसमें बाढ़ नहीं आती है ना। तो इसी प्रकार से तद्वत काम कामायम प्रविशंति सर्वे, जिसमें भौतिक इच्छाएं मतलब आती हैं लेकिन वो व्यथित नहीं होता, शांत मां अपनोती, तो वो शांति प्राप्त करता है। न काम कामी, जो कामनाओं को चाहता है वो नहीं ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया ये अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है, ना तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी रहते हैं, अतः वो सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वो अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। तो बहुत अच्छा यहाँ पर भगवान ने उदाहरण दिया है। तो नदियों में, नदियों के जल जो है समुद्र में गिरते हैं, लेकिन समुद्र में जल इतना अधिक भरा है पहले से कि नदियों के जल की तुलना में उसका जल बहुत ज़्यादा है, बहुत पहले से भरा हुआ है। उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत का जो रस आस्वादन प्राप्त हो रहा है वो समुद्र के समान है, है? और वो उसमें उससे भरा हुआ है। तो इसलिए जो इंद्रियों के जो मतलब विषय हैं, इंद्रियों के जो सुख हैं, वो उसको जो प्राप्त होते हैं उनसे वो उसमें कुछ है, विचलित नहीं होता, बेचैन नहीं होता। कितना अच्छा उदाहरण है ना। इसमें सुनिए बड़े ध्यान से, श्री भगवान ने कहा, मैं लिखा है, जिस प्रकार समुद्र को नदियों का असीमित जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रचार करते हुए श्रील प्रभुपाद को असीमित धन राशि प्राप्त हुई। अब यहाँ प्रभुपाद से तुलना की है, उस व्यक्ति की तुलना प्रभुपाद से की है, जो कि कृष्ण भावना भावित है। तो प्रभुपाद को असीमित धन की प्राप्ति हुई, कैसे? जैसे समुद्र को नदियों का जल प्राप्त होता है, समुद्र को नदियों का असीमित जल प्राप्त होता है, क्योंकि जितनी नदियां हैं सब के समुद्र में कहाँ जाती हैं, समुद्र में तो जाती हैं, चाहे वो कहीं भी बहें, इधर उधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी, अंत में कहाँ जाती हैं, समुद्र में ही जाती हैं, है ना। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद को भी जो है असीमित धन प्राप्त हुआ। इस जिस प्रकार असीमित जल राशि प्राप्त होने पर भी समुद्र की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, यानी जल स्तर नहीं बढ़ता, उसी प्रकार श्री प्रभुपाद ने भी उस असीमित धनराशि के प्राप्त होने पर भी अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई, अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई प्रभुपाद ने, उनकी प्रतिष्ठा श्री कृष्ण के दास के रूप में पहले भी थी और उस समय भी वही स्थिति रही। यहाँ पर अचल प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाए, अपना सम्मान नहीं समझता कि अब तो मैं ज्यादा बड़ा हो गया हूँ, मेरे पास इतनी धन संपत्ति आ गई तो अब मैं जो है, अब तो देखो मैं वो बन गया हूँ, कितना धनवान बन गया हूँ मैं, कितना बड़ा बन गया हूँ, तो वो नहीं सोचता ऐसा। असल में प्रतिष्ठा का भी मतलब है। तो प्रभुपाद की प्रतिष्ठा क्या थी, पहले भी कृष्ण के दास के रूप में थी और अभी भी वैसे ही। उन्होंने अपने को श्री कृष्ण के दास से बढ़कर कभी भी नहीं समझा, बल्कि उस धन राशि का प्रयोग उन्होंने श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा बढ़ाने में किया, है ना। तो यहाँ पर शब्द क्या है, अचल प्रतिष्ठम, अचल है प्रतिष्ठम, समुद्र की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, समुद्र का जल स्तर नहीं बढ़ता, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसका अहंकार नहीं बढ़ता, जैसे समुद्र का पानी नहीं बढ़ता और इतना नदियों का पानी आया लेकिन पानी उसका नहीं बढ़ा, जल स्तर नहीं बढ़ा, उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास भी बहुत सी मतलब धन संपत्ति आती है तो भी उसका अहंकार नहीं बढ़ता, उसका घमंड नहीं बढ़ता, है ना। फिर ये इसमें सुनिए, इसी प्रकार की भावना हमें अर्जुन में, युधिष्ठिर महाराज में और पांचों पांडवों में भी दिखाई देती है जो आज से 5000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर थे। उन्हें भी जब बिना किसी प्रयास के तथा श्री कृष्ण की कृपा से असीमित ऐश्वर्य और इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त हुआ तो युधिष्ठिर महाराज एक सर्वश्रेष्ठ यज्ञ राजसूय नामक यज्ञ करना चाहते थे। राजसूय यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। इस यज्ञ में पृथ्वी के समस्त राजाओं को यज्ञ में सेवक का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जो राजा मित्र होते हैं, वे तो स्वतः उस यज्ञ में सेवा का कार्य प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, परंतु जो द्वेषी और शत्रु राजा हैं उन्हें पराजित करके यज्ञ में कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। जो व्यक्ति राष्ट्र यज्ञ करता है तो वो जो है सब राजाओं को निमंत्रण देता है कि आप इस यज्ञ में आप सेवा का काम करिए, है ना। तो जो मित्र राजा होते हैं वो तो अपनी खुशी से आते हैं, है ना, और जो नहीं होते हैं तो उनको पराजित करके आना पड़ेगा राष्ट्रीय यज्ञ में सेवा करने के लिए। तो वहाँ पर सेवकों को नहीं लगाया जाता है उस यज्ञ में, जितना भी कार्य होता है सेवकों के द्वारा नहीं होता है, राजाओं को सेवक बनाया जाता है उस यज्ञ में। इस प्रकार जो व्यक्ति राजसूय यज्ञ करता है उसकी इस जगत में प्रतिष्ठा सबसे बढ़कर हो जाती है। तो फिर कोई ये भी सोच सकता है कि युधिष्ठिर महाराज अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते थे? नहीं, वे इस यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे। किस प्रकार? वे संपूर्ण विश्व में इस सत्य की स्थापना करना चाहते थे कि जो लोग कृष्ण के अनन्य भक्त हैं उन्हें किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता और न ही कोई शत्रु उन्हें पराजित कर सकता है। जो कृष्ण भक्त हैं वे अचल प्रतिष्ठ होते हैं। जिस प्रकार समुद्र युधिष्ठिर महाराज की भावना इतना भारी ऐश्वर्य पाकर भी बदली नहीं, वे अपने को श्री कृष्ण का दास ही मानते रहे, है ना। तो ये जो है मतलब भाव है, है ना। तो असल प्रतिष्ठम का मतलब यही है। युधिष्ठिर महाराज पांच पांडव जो है बहुत संकट में रहे, बहुत विपत्तियों में रहे, है, और फिर एकदम से उनको बहुत संपत्ति प्राप्त हुई, है ना। तो होता क्या सामान्य व्यक्ति को, है, बहुत विपत्ति में था, बहुत दरिद्र था, एकदम से बहुत धनी बन जाता है तो दिमाग आसमान में चला जाता है, ऐसे ऐसे करता है, है ना। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है तो उसमें कुछ भी ऐसा भाव नहीं होता है, है ना। तो वो कृष्ण की ही प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाता है, है ना। तो ये है। अच्छा, अब श्लोक संख्या 71 मेरे पीछे बोली। विहाय कामान यहां सर्वं पुमान चरति निस्पृहान् निर्ममो निरहंकारः शशान्तिम् अधिगच्छति। अनुवाद पढ़िए। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, विहाय कामान यह सर्वान, जो विहाय माने त्याग करके, कामान सर्वान सब कामनाओं को त्याग करके, यह यानी जो व्यक्ति पुमांस, पुमान का मतलब है पुरुष, चरति निष्प्रिया मतलब रहता है कैसा, निष्प्रिया यानी इच्छा रहित होकर के, फिर निर्ममो ममता रहित होकर के, फिर निरहंकारा अहंकार रहित होकर के, शांति में अधिगच्छति वो शांति प्राप्त करता है। तो यहाँ पर तीन शब्द हैं है? जिनमें नी पहले आता है, कौन कौन से हैं देखिए, है? पहला शब्द है निष्प्रिया, दूसरा शब्द है निर्ममो, तीसरा है निरहंकारा, है ना। तो तीन शब्दों में नी आता है ना, और नी का मतलब नहीं है, निष्प्रिया का मतलब है स्प्रिया नहीं, यानी इच्छा नहीं। फिर निर्मम का मतलब है मम नहीं, हाँ मम नहीं है, ममता नहीं। और निरहंकार का मतलब अहंकार नहीं, है ना। तो तीन चीजें नहीं तो फिर क्या होता है, शांति, शांति में देगा क्षति। तीन चीजें ना हो तो फिर क्या होता है, शांति होती है ना। तो तीन चीजें ना हो तभी एक चीज होती है, और वो क्या होती है, शांति होती है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। निष्प्रिया होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। निष्प्रिया होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा समझा रहे हैं, क्योंकि जो मायावादी लोग हैं वो इसका अर्थ यही निकालते हैं कि कोई भी इच्छा ना हो, है ना। ये प्रभुपाद क्या समझाते हैं कि अगर कोई इच्छा नहीं है तो फिर जीवन ही नहीं है, है ना। तो फिर जीवन का मतलब ही नहीं है अगर कोई इच्छा ही ना हो, है ना। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं कि ये इच्छा ना होने का मतलब क्या है कि कृष्ण भावना भाव होने की इच्छा ही वास्तव में इच्छा शून्यता है। इसका मतलब है कि भौतिक इच्छाएं नहीं होना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को शून्य करना चाहिए। हमारे अंदर जो है ये भौतिक इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, ये अशुद्ध इच्छाएं ना होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर शुद्ध इच्छा हो। तो कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा ही निष्प्रियता है, इच्छा शून्यता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार के किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वो जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जब वे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गए तो उन्होंने युद्ध किया क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वे युद्ध करें। उन्हें अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा ना थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़े। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। निष्प्रिया का मतलब इच्छा नहीं, इसके अंदर अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं, है ना। तो फिर इच्छा तो होगी, फिर किस तरह की इच्छा होगी, कृष्ण की तुष्टि, कृष्ण को तुष्ट करने की इच्छा। तो कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा, हाँ, अगर कोई इच्छा ना हो कि हमारे तो कोई इच्छा नहीं है तो फिर आप क्या हैं, निर्जीव हैं, जैसे ये इसमें कोई इच्छा नहीं, निर्जीव है, इसमें कोई जीवन नहीं, है ना। तो इसलिए इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब भगवान कह रहे हैं निष्प्रिया की इच्छा ना हो तो इसका मतलब है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना हो। देखिए इसको सुनिए बड़े ध्यान से। गंधर्व राज का चरित्र। ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन है कि पूर्व काल में जो गंधर्वों के राजा थे उन्होंने गुरु की आज्ञा लेकर पुष्कर तीर्थ में जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना आरंभ किया। किसने तप करना आरंभ किया? गंधर्व राज ने। हैं, कहां पर? पुष्कर में हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय गंधर्व राज ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। क्या मांगा? भगवान कृष्ण की भक्ति और परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। गंधर्व राज की बात सुनकर शिव जी हंसकर बोले, गंधर्व राज, मैं दूसरों को श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी सेवा का सुख देने के लिए उत्सुक नहीं हूं। वत्स, जो तुम्हारे मन में अभिष्ट हो ऐसा कोई दूसरा वर मांगो, अथवा इंद्र का पद मांग लो, अमरत्व मांग लो, अमरता, या ब्रह्म पद प्राप्त कर लो। मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धियां दे दूंगा, महान योग दे दूंगा, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला ज्ञान दे दूंगा, ये सब कुछ सुखपूर्वक दे दूंगा, किंतु यहां श्री कृष्ण की सेवा मांगने का आग्रह छोड़ दो, क्षमा करो। किसने कहा? शिव जी ने कहा। शिव जी की बात सुनकर गंधर्व राज का कंठ, ओठ और तालु सूख गए। वे अत्यंत दीन भाव से शिव जी से बोले, प्रभु, जिसका ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ते ही पतन हो जाता है, वो ब्रह्म पद सपने के समान मिथ्या है, क्षणभंगुर है। श्री कृष्ण भक्त उसे नहीं पाना चाहता। इंद्र का पद और अमरता, सिद्धि योग अथवा मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाले ज्ञान की प्राप्ति भी श्री कृष्ण भक्त को अभीष्ट नहीं है। श्री कृष्ण की अविचल भक्ति और उनकी परम दुर्लभ सेवा प्राप्त हो, यही सोते जागते हर समय भक्तों की इच्छा रहती है। अतः यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। प्रभु, आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, अतः मुझे वर के रूप में श्री कृष्ण की सेवा का सुख और वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिए। यदि आप मुझे पापी मानकर ये वर नहीं देंगे तो मैं अपना मस्तक काट कर अग्नि में डाल दूंगा। गंधर्व राज के इस बात पर प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी सेवा का सुख और परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। तो शिव जी पहले क्यों कह रहे थे ऐसी बात? परीक्षा लेने के लिए। कहते इसके अलावा और कुछ मांग लो, और बड़े बड़े वरदान है वो मांग लो, है ना? तो परीक्षा देने के लिए बोल रहे थे ना शिव जी, है ना? इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण की भक्ति से ही जीवात्मा कृतार्थ होता है। दूसरे वर तो चबाए हुए को चबाने के समान है। दूसरे वर जिसकी श्री कृष्ण में सुदृढ़ है भक्ति है, वो खेल खेल में ही सब कुछ करने में समर्थ है। श्री कृष्ण भक्त अपने पिता तथा माता की असंख्य पीढ़ियों का उद्धार करके निश्चय ही गोलोक में जाता है। मनुष्यों को तभी तक पत्नी की इच्छा होती है, तभी तक पुत्र प्यारा लगता है, तभी तक ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा होती है, और तभी तक सुख दुख होते हैं जब तक उसका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता, है ना? तो ये मतलब है जो भगवान कह रहे हैं निष्प्रहा, है ना? अच्छा, अब इसमें तीन बातें हैं। अभी हमने जो बताया ना, हम चर्चा कर रहे थे कि तीन बार नहीं आया है, तीन शब्दों में नहीं आया है। तो पहला शब्द है निष्प्रिया, कि स्प्रिया नहीं होना चाहिए, और दूसरा शब्द क्या है? निर्मम, ममता नहीं होना चाहिए, और तीसरा शब्द क्या है? निरहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना? तो शांति प्राप्त होती है, ठीक है? अब पांचवें अध्याय का अंतिम श्लोक है, भोक्ता रम यज्ञ तपसाम, ये श्लोक कितने लोगों को पता है? हाँ तो रही, एक दो तीन, ज्यादा लोगों को पता नहीं। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। प्रभुपाद इस श्लोक को जगह जगह उद्धृत करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो स्वामी भगवान ने तीन बातें बताई हैं कि तीन बातों से व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। तो तीन तरह से कृष्ण को समझना है। एक तो कृष्ण परम भोक्ता है, पहली बात कृष्ण परम भोक्ता है, दूसरी बात सर्वलोक महेश्वरम सब चीजें के स्वामी, हर चीज के स्वामी है कौन? कृष्ण। और तीसरी बात सुहृदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के सुहृद है। तो तीन प्रकार से जो कृष्ण को जान ले वो शांति प्राप्त करता है। और यहां पर भगवान ने तीन बार नी शब्द का प्रयोग किया है कि ना हो, ये तीन चीज ना हो तो शांति प्राप्त करता है, है ना? तो हमें इस जो है पुस्तक श्री भगवान ने कहा, हमने इसको मिलान किया है कि ये जो तीनों चीजें जो उन तीन चीजों से मिलती हैं, तो पहली है बात निष्प्रिया, कि मतलब उसकी इच्छा नहीं होती, है ना। हाँ, और उसमें पहली बात क्या है कि कृष्ण परम भोक्ता है, है ना। तो कृष्ण ही भोक्ता है, तो वो अपने लिए कुछ नहीं भोगना चाहता है, कृष्ण को भोग प्रदान करना चाहता है। तो पहली बात निष्प्रिया, कि मतलब उसको स्वतंत्र रूप से भोगने की इच्छा नहीं होती है, कृष्ण जो भोगे और फिर उनकी प्रसन्नता से जो उसको मिले कृष्ण का प्रसाद वो भोगता है, है ना। तो वो क्या हो गया, निष्प्रिया है। तो ये निष्प्रिया हो गई, ये बात जो इस श्लोक में पहली बात है निष्प्रिया, और उस श्लोक में क्या है कि कृष्ण को भोक्ता मानना। तो दोनों बातें एक ही है कि कृष्ण को वो भोग प्रदान करना चाहता है, है ना, उसकी इच्छा है कृष्ण को भोग प्रदान करने की है, और यहाँ पर है कि उसकी भोगने की इच्छा नहीं है। तो दोनों बातें एक ही है, निष्प्रिया। फिर दूसरा शब्द इसमें निर्मम है ना, कि मेरा कुछ नहीं है। निर्मम का मतलब है कि मेरा कुछ नहीं है, ममता उसके अंदर नहीं है कि भाई मेरा कुछ है, है ना। और उसमें दूसरी बात क्या है, सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोगों के स्वामी है, सब कुछ उनका है। तो ये भी मिलान हो रहा है ना, कि मेरा कुछ नहीं है और सब कुछ तेरा है, है ना। तो ये यहाँ भी मिलान हो गया है कि अपनी चीज कोई नहीं समझना, अपना अधिकार नहीं समझना किसी भी चीज में, निर्मम। वहां पर है सर्वलोक महेश्वरम, सब के ईश्वर कृष्ण है, है ना। तो ये दूसरी बात हो गई। तो तीसरी बात इसमें क्या है, निरहंकार है, किसके अंदर अहंकार नहीं होता है कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना। और उसमें तीसरी बात क्या है, सब प्राणियों के सुहृद हैं। तो कृष्ण अच्छे हैं सुहृद है, तो कृष्ण ही सब प्राणियों के मित्र हैं, कृष्ण ही सब प्राणियों के हितैषी हैं, हित करने वाले हैं, है ना। हाँ, मैं नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, देन अहंकार का मतलब कि उसके अंदर अपने अंदर अच्छा होने का अहंकार नहीं कि मैं अच्छा हूँ, है ना। तो शांति में दिख अच्छे थी, तो वो शांति प्राप्त करता है, है ना। तो इसको जो है हमने समझाया है इस तरह से। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति पर कृष्ण का ही अधिकार है तथा श्री कृष्ण का ही नियंत्रण है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि कृष्ण भावना अमृत का अर्थ यही है कि ये समझना कि प्रत्येक वस्तु पर श्री कृष्ण का ही अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है, ये निर्मम निर्मम की बात है। यदि हम किसी भी वस्तु के ऊपर अपना अधिकार समझते हैं तो हम श्री कृष्ण की दृष्टि में चोर हैं, है ना। अच्छा, निरहंकार शब्द की व्याख्या। तीसरी बात है कि ये जाना जाए कि श्री कृष्ण ही समस्त प्राणियों के सुहृद हैं। इसी बात को भगवान यहाँ पर निरहंकार शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं। निरहंकार शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अहंकार अर्थात मैं अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ ऐसा भाव नहीं है। इस प्रकार निरहंकार शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है तथा अपने आप को किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं मानता है। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वे सभी जीवात्माओं का हित करने वाले हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित हैं तथा वे प्रत्येक जीवात्मा का हित जानते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि वे प्रत्येक जीवात्मा का हित कर भी सकते हैं। इतने पर भी प्रश्न उठता है कि यदि ये मान भी लिया जाए कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा का हित जानते हैं तथा वे प्रत्येक जीवात्मा का हित कर भी सकते हैं, परंतु क्या ऐसा है कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा का हित करना चाहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान गीता 5:29 में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम है कि श्री कृष्ण को समस्त प्राणियों को सुहृद अर्थात हित चाहने वाला जानकर शांति प्राप्त करता है। कि कृष्ण हित चाहते भी हैं, कृष्ण हित जानते भी हैं कि किस किस प्रकार से हित होगा, कृष्ण जानते भी हैं है? और कृष्ण कर भी सकते हैं लेकिन करना भी चाहते हैं, कृष्ण करना भी चाहते हैं हित सब प्रण। तो जो जान लेगा इस बात को उसको शांति प्राप्त होगी, है ना। तो इस तरह से शांति प्राप्त होगी। अच्छा, अब श्लोक कौन सा श्लोक है अंतिम है, मेरे पीछे बोलिए। ऐसा ब्राह्मे स्थिति पार्थ, नैनाम प्राप्य विमोहति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम् रिच्छति। अनुवाद पढ़िए। हाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, ये आध्यात्मिक स्थिति है। न एनाम प्राप्त विमोहति, इसको प्राप्त करके वो फिर मोहित नहीं होता है, मतलब वापस नहीं जाता वो, फिर वो जो है भौतिक चेतना में वापस नहीं जाता। स्थित्व श्याम अंत काले भी, अंत काल में भी इसी स्थिति में रह करके ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो, ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं स्थित्व श्याम अंत काले भी, कि हो सकता है जीवन काल में वो ना कर पाए और अंत काल में फिर भी वो आ जाए। अंतकाले की अंतकाले भी का मतलब ये भी है कि अगर उसने जीवन काल में नहीं भी मतलब अगर प्राप्त की वो स्थिति कृष्ण भावनामृत की स्थिति, और अंतकाल में ही अगर प्राप्त कर ली तो भी वो ब्रह्म निर्वाणम यानी मुक्ति प्राप्त कर लेगा, है ना। यहाँ पर ये है ना। तो खटवांग महाराज की बात प्रभुपाद कहते हैं मृत्यु कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। तो भगवान के धाम चले गए राजा खटवांग, उनको पता चला कि अंत्यकाल उनका आने वाला है, अंतिम जीवन के अब अंतिम क्षण आ गए हैं। तो उन्होंने सब अपने चिंताओं को छोड़ दिया, अपने सब जिम्मेदारियों को छोड़ दिया और कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाया और शरीर छोड़ करके कृष्ण के धाम चले गए, है ना। तो कोई व्यक्ति जो है मतलब ये ऐसा भी कर सकता है, लेकिन जीवन काल में अभ्यास अगर नहीं किया तो अंत्यकाल में कैसे होगा, समझना तो पड़ेगा ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है। तो प्रभुपाद जो है जो बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का बड़ा महत्व होता है। उनके विचार से हमें इस जीवन काल में निर्वाण की प्राप्ति करना चाहिए और जीवन के बाद में तो सब शून्य है। बौद्ध धर्म मतलब एक प्रकार का बड़ा मतलब ये है नास्तिक है कि जीवन के अंत में तो शून्य है, मतलब जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है। बौद्ध धर्म में यही मानते हैं जीवन के बाद कोई अगला जीवन है ही नहीं, क्या है शून्य खत्म, बहुत बड़ा ज्ञान है। लेकिन और बुद्ध भगवान ने ही जो है भगवान ने ही बुद्ध के रूप में इस तरह का जो है सिद्धांत दिया है, है ना। लेकिन बुद्ध भगवान ने जो है मतलब एक निर्वाण की स्थिति को समझाया कि इस जीवन काल में आपको वो निर्वाण प्राप्त करना चाहिए। तो उस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना जिससे आप निर्वाण प्राप्त करें। तो बौद्ध धर्म में उस निर्वाण को जो है महत्व देते हैं जो इस जीवन काल में ही प्राप्त हो, तो जीवन के बाद तो कोई बात ही नहीं है, कुछ कुछ होता ही नहीं, सब समाप्त हो जाए, है ना। तो वो निर्वाण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो ब्रह्म निर्वाण का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्म निर्वाण मृक्षति, अंतकाल में ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है, अंतकाले अंतकाल में। तो बौद्ध धर्म में अंतकाल में नहीं होता है ब्रह्म निर्वाण या निर्वाण, वो तो ब्रह्म निर्वाण नहीं बोलते, वो तो निर्वाण बोलते हैं। अंतकाल में वो कहते हैं कि निर्वाण प्राप्त नहीं होता है क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे, हम ही खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। तो गीता जो है मतलब जो बात बताती है ब्रह्म निर्वाण, है ना, कि जीवन के अंतकाल में ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है, तो इसका मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति होती है ना। तो इसमें धर्म निर्माण का काफी गहरा अर्थ भी जो है निकाला गया है, जिसको मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। निही का अर्थ है नहीं, और वान का अर्थ है वन में रहने वाला। वान का मतलब वन में रहने वाला। इस प्रकार निर्वाण शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो जंगली अशिक्षित या असभ्य नहीं है। इसका अर्थ यह भी हुआ जो व्यक्ति जंगली नहीं है अर्थात अपने घर का है। ये भौतिक संसार एक जंगल है और इसके अंदर जितने भी जीव हैं वे सभी इस जंगल में जंगली व्यक्तियों के समान व्यवहार कर रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर के हैं। इस प्रकार निर्वाण शब्द का अर्थ श्री कृष्ण हुआ। तो वान शब्द का दूसरा अर्थ है वन का निवास स्थान। इस प्रकार निर्वाण शब्द का दूसरा अर्थ हुआ ऐसा निवास स्थान जो वन नहीं है अर्थात अपने घर का निवास स्थान। इस प्रकार ब्रह्म निर्वाण का अर्थ हुआ श्री कृष्ण के घर का निवास स्थान अर्थात भगवत धाम। तो ब्रह्म निर्वाण का मतलब क्या हुआ? कृष्ण का धाम, है ना। तो इस तरह से अब समय भी हो गया है, तो अब मेरे ख्याल से प्रश्न करने का समय नहीं है, या एक गलत प्रश्न करना चाहेंगे आप लोग? निशांत काल का 3:22 से 5:46 तक, तीन हिस्से 48-48 मिनट के तीन मुहूर्त होते हैं, ठीक है। 4:10 से 4:58 तक। अगर आप ये पुस्तक लेंगे श्री भगवान ने कहा तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।